स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई कुछ पुरानी, कुछ जानी कुछ अनजानी। आज सुनते हैं एलिस वॉकर की अंग्रेजी कहानी एवरीडे यूज का हिंदी अनुवाद, रोजाना इस्तेमाल। हिंदी में अनुवाद किया है रंजना श्रीवास्तव ने। मैंने और मैगी ने कल मिलकर अहाते को खूब साफ और लहरदार बना दिया है, तो उसका इंतजार मैं वहीं करूंगी। आमतौर पर लोग जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा आरामदेह होता है ऐसा अहाता, जैसे बैठक को आगे बढ़ा दिया गया हो, सख्त मिट्टी को बुहार कर फर्श सा चमका दिया जाए और छोटे छोटे आड़े तिरछे खांचुक के किनारों में बारीक बालू की पात बना दी जाए, तो कोई भी यहां आकर बैठ सकता है उस बयार के इंतजार में जो घर के भीतर कभी नहीं आती। बोदी और घरेलू सी मैगी तब तक घबराई घबराई रहेगी जब तक बड़ी बहन चली ना जाए। बाहों और टांगों पर पड़े जले के निशानों पर शर्मिंदा, कोनों में खड़ी निराश बहन को कुछ ईर्ष्या कुछ श्रद्धा की नजरों से ताकती। उसका ख्याल है बहन ने जीवन को सदा से अपने एक हाथ की मुट्ठी में थामा हुआ है कि ना वो शब्द है जिसे बहन ने दुनिया से कहना कभी सीखा ही नहीं। ऐसे टीवी शो तो आपने देखे ही होंगे जिसमें कामयाबी हासिल कर चुकी बेटी का सामना आश्चर्य की तरह नेपथ्य से गिरते पड़ते आते उसके माँ बाप के साथ कराया जाता है, बेहद सुखद आश्चर्य। और मान लो कि बेटी और माँ बाप जो एक दूसरे को बुरा भला कहने, एक दूसरे की लानत मलामत करने के लिए शो पर आए हों तो क्या करेंगे शो वाले? टीवी पर माँ बेटी गले मिलती हैं, एक दूसरे को देख मुस्कुराती हैं, माँ बाप कभी कभी रो भी पड़ते हैं, बेटी उन्हें बाहों में भर लेती है और मेज पर आगे झुक कर बताती है कैसे वो उनकी मदद के बिना कभी कामयाब नहीं हो सकती थी। मैंने भी देख रखे हैं ऐसे शो। कभी कभी सपना देखती हूं कि मैं और डी ऐसे ही एक टीवी कार्यक्रम में अचानक आमने सामने ले आए गए हैं। एक गद्देदार लिमजीन गाड़ी में मुझे कई लोगों से भरे एक रोशन कमरे में ले जाया गया है। वहां मैं जॉनी कार्सन जैसे एक मुस्कुराते खिचड़ी बालों वाले खिलाड़ी नुमा आदमी से मिलती हूं। वो मुझसे हाथ मिलाता है, बताता है मेरी बेटी कितनी शानदार है। फिर हम मंच पर होते हैं और आंखों में आंसू भरे डी मुझे बाहों में भर लेती है। मेरी ड्रेस पर वो ऑर्किड का बड़ा सा फूल टांग देती है, हालांकि एक बार मुझे बता चुकी है कि ऑर्किड के फूल उसे निहायत फूहड़ लगते हैं। असल जिंदगी में मैं एक लंबी चौड़ी मर्दाने हाथों वाली और बड़ी हड्डियों वाली औरत हूं। सर्दियों में रात को सोते समय फ्लैनल के नाइट गाउन पहनती हूं और दिन में ओवरऑल। सुअर को मैं उतनी ही निर्ममता से मार कर साफ कर सकती हूं जितना कोई मर्द। शून्य तापमान में भी मेरी चर्बी मुझे गर्म बनाए रखती है। पूरा दिन घर के बाहर धुलाई के लिए बर्फ तोड़ती काम कर सकती हूं। सुअर से निकली भाप छोड़ती कलेजी मिनटों बाद खुली आग में पकते ही खा सकती हूं। एक बार की सर्दी में मैंने एक बछड़े की आंखों के बीचों बीच ऐन दिमाग पर धंधे मारा और रात होने के पहले ही उसका मांस ठंडा होने के लिए लटका दिया था। लेकिन हां, टीवी पर यह सब कुछ नहीं दिखता। वहां मैं वैसी ही हूं जैसा मेरी बेटी मुझे देखना चाहेगी, 100 पाउंड से भी हल्की, जौ के अनपके चीले जैसी त्वचा, तपती चमकीली रोशनी में चमकते बाल, मेरी तेज हाजिर जवाब जुबान का मुकाबला करने में जॉनी कार्सन को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन ये भूल है मेरी, जागने से पहले ही मैं जान जाती हूं। किसने देखा है भला कोई तेज जुबान जॉनसन? ऐसी कल्पना भी कौन कर सकता है कि मैं किसी अजनबी गोरे से आंख मिलाऊंगी? मुझे तो लगता है कभी अगर मैंने उनसे बात भी की है तो भागने को एक पैर तो उठा ही रहा है, सिर भी उस दिशा में घूमा रहा जो उनसे ज्यादा से ज्यादा दूरी पर हो। लेकिन डी, वो तो किसी की भी आंखों में आंखें डालकर देख सकती है, हिचक उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं है। कैसी लग रही हूं मामा? मैगी कहती है। गुलाबी स्कर्ट और लाल ब्लाउज में लिपटी हुई दुबली देह सिर्फ इतनी भर दिख रही है कि मैं जान जाऊं कि वो वहां है, दरवाजे के पीछे लगभग छुपी। अहाते में आ जाओ, मैं कहती हूं। आपने कोई अपाहिज जानवर देखा है? शायद कोई कुत्ता जो ऐसे किसी लापरवाह आदमी से कुचला गया हो जो इतना अमीर है कि गाड़ी खरीद सके, और वो दुबक कर चलते हुए ऐसे ही किसी आदमी के पास पहुंच जाए जो इतना नासमझ हो कि उसके प्रति दयालु हो उठे। मेरी मैगी ठीक उसी तरह चलती है, ठोड़ी छाती पर, नजरें जमीन पर, पांव घिसटते हुए। जब से आग ने दूसरे मकान को जलाकर जमींदोज कर दिया है वो ऐसी ही है। मैगी के मुकाबले डी उजली है, उसके बाल ज्यादा सुंदर, बदन ज्यादा भरा हुआ है। वो अब एक औरत है, हालांकि मैं भूल जाती हूं कभी कभी। कितना वक्त हुआ उस दूसरे मकान को जले? 10-12 साल। कभी कभी अब भी मैं लपटों को सुन सकती हूं, मुझसे लिपटी मैगी की बाहों को महसूस कर सकती हूं, उसके धुआंते बाल, नन्ही नन्ही काली धज्जियों में शरीर से गिरती पोशाक। ऐसे लगता था जैसे उसकी आंखें खींच कर या फिर उनमें झलकती लपटों से धधका कर खोल दी गई हों। और डी, उसे मैं मीठे गोंद के पेड़ के तले देखती हूं जिसमें से खोद खोद कर वो गोंद निकाला करती थी। मकान के आखिरी मैले धूसर पटरे को, तपती हुई लाल ईंटों की चिमनी को देखते वक्त उसके चेहरे पर तल्लीनता का भाव था। तुम नाच क्यों नहीं लेती राख के चारों ओर, मैं पूछना चाहती थी। इस कदर नफरत थी डी को उस मकान से। मैं सोचा करती थी उसे मैगी से भी नफरत है, मगर वो तब की बात है जब तक हमने, मैंने और चर्च ने स्कूल के लिए उसे अगस्टा भेजने लायक पैसों का इंतजाम नहीं कर लिया। निर्दय भाव से वो हमारे लिए पढ़ा करती, भारी भरकम लफबाजी, झूठ, दूसरों की आदतें, पूरी पूरी जिंदगियां हम दोनों के ऊपर ठेलती चली जाती, और हम नासमझ उसकी आवाज के नीचे दबे हुए फंसे बैठे रहते। मनगढ़ंत की नदी में वो हमें नहलाती, ऐसे बहुत से ज्ञान से हमें जलाती जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। पढ़ने के अपने गुरगंभीर तरीके से वो हमें खुद से सटा लेती, लेकिन जिस क्षण हमको लगता अब कुछ समझ में आने ही वाला है, उसी क्षण हम दोनों को वो बेवकूफ की तरह धकेल दिया करती। डी को अच्छी चीजों की चाहत थी। हाई स्कूल से ग्रेजुएशन के समारोह पर पहनने के लिए ऑर्गेंडी की पीली पोशाक, मुझे कभी किसी के दिए गए सूट से उसने अपना जो हरा सूट बनाया था, उसके साथ पहनने के लिए काले पंप शूज, अपनी कोशिशों के आड़े आने वाली हर चीज को घूरने में हरा देने के इरादे में वो पक्की। एक बार में कई कई मिनटों तक पलके न झपकती। कई बार मन होता झकझोर दूं, पर खुद को रोक लेती। 16 की उम्र में अपना ही एक अंदाज था उसका, और अंदाज किसे कहते हैं ये वो जानती थी। मुझे तो कभी तालीम मिली नहीं, दूसरी जमात के बाद ही स्कूल बंद कर दिया गया। क्यों, ये मत पूछिए। आज के मुकाबले सन 1927 में अश्वेत लोग सवाल कम ही पूछा करते थे। अब मैगी मेरे लिए कभी कभी पढ़ती है, खुशी खुशी, रुक रुक कर पढ़ती जाती है, मगर ठीक से देख नहीं पाती। जानती है बहुत तेज नहीं है वो, खूबसूरती और पैसे की तरह तेजी भी उससे किनारा कर गई है। मैगी जॉन टॉमस से शादी करेगी, भारी चेहरे पर काई लगे दांत वाला, और तब मैं आजाद हो जाऊंगी ताकि यहां बैठे बैठे खुद को सुनाने को चर्च गीत गा सकूं। हालांकि मैं कभी अच्छा नहीं गा पाई, सुर कभी सधे ही नहीं। मर्दों वाले काम मैं बेहतर कर लेती थी, दूध दोहना पसंद था, जब तक कि सन 39 में एक तरफ लात नहीं खा ली। गाय स्वभाव से बहुत शांत और स्थिर होती है अगर उसको गलत तरीके से दोहने की कोशिश न की जाए। जानबूझकर मैंने मकान की ओर पीठ कर ली है। इस मकान में भी 3 कमरे हैं, उस मकान की तरह जो जल गया था। बस छत टीन की है, वैसी पटाव की छतें बननी अब बंद हो गई हैं। खिड़कियां भी असली नहीं हैं, छेद बने हैं दीवारों में, पानी के जहाज में बने गोखों की तरह, न गोल न चौकोर। ان کے دروازوں پر باہر کی طرف سے چمڑے کی روک لگی ہے۔ یہ مکان بھی چارہ گاہ میں ہے دوسرے والے کی طرح۔ ڈی جب دیکھے گی بے شک اسے گرا دینا چاہے گی۔ ایک بار اس نے مجھے لکھا بھی تھا کہ رہنے کے لیے ہم جو بھی جگہ چنیں گے وہاں وہ آ کر مل لے گی، لیکن اپنے دوستوں کو کبھی نہیں لائے گی۔ میں نے اور میگی نے اس کے بارے میں سوچا تھا، اور میگی نے پوچھا تھا، مما ڈی کے کب کوئی دوست تھے؟ تھے اس کے دوست، گلابی قمیضیں پہنے چور انداز لڑکے، دھلائی کے دن اسکول کے بعد منڈراتے، کبھی نہ ہنسنے والی گھبرائی ہوئی لڑکیاں، ڈی کی کائل، بولنے کا ان کا سلیقہ، سندر آکرتی، راک کر دینے والی اس کی مکھول کرنے کی عادت، جو ہر دم سجی ملے پانی میں سگبگاتے بلبلوں کی طرح پھوٹتی رہتی۔ پھر پوچھتے تھے اس کو، ڈی انہیں بھی پڑھ کر سنایا کرتی تھی۔ جب اس کا جمی ٹی کے ساتھ چل رہا تھا تب ہم دونوں کے لیے اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، بلکہ مین میک کی اپنی ساری قوت وہ اسی پر خرچ کر دیتی تھی۔ جمی ٹی بیوقوف اور بھڑکیلے لوگوں کے پریوار کی ایک چپڑ سی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کو اڑ گیا۔ ڈی کو مشکل سے ہی خود کو سنبھالنے بھر کا وقت ملا تھا۔ جب وہ آ جائے گی تو مل لوں گی، لیکن لو وہ تو آ بھی پہنچے۔ پاؤں گھسٹاتے ہوئے میگی نے بھیتر بھاگ نکلنے کی کوشش کی، مگر میں نے روکا، کہا واپس آؤ، اور وہ رک گئی۔ پاؤں کے انگوٹھے سے ریت میں کنواں بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ تیز دھوپ میں ان کو صاف دیکھ پانا تو مشکل ہے، لیکن کار سے نکلی ٹانگ کی پہلی جھلک سے ہی میں جان گئی ہوں کہ ڈی ہے۔ اس کے پاؤں صدا سے صاف ستھرے ہیں، جیسے خود ایشور نے خاص انداز میں گڑھا ہو۔ کار کی دوسری طرف سے ایک ناٹا گٹھیلا آدمی اترا ہے۔ اس کی کھوپڑی پر فٹ بھر لمبے بال ہی بال ہیں، اور ٹھوڑی پر بھی کھچر کی اینٹھی ہوئی پونچھ کی طرح لٹک رہے ہیں۔ مجھے میگی کی سانس کی چھونک سنائی دی ہے، اونہ کی آواز کرتی ہوئی، جیسے سڑک پر پاؤں کے عین سامنے سانپ کی کل بلاتی دم کا سرا نظر آ جائے۔ اس کے بعد ڈی، زمین تک لمبی پوشاک، اس گرمی کے موسم میں ایسی بھڑکیلی کہ آنکھوں کو چوٹ لگی، اتنے نارنگی اور پیلے رنگ کہ سورج کی روشنی ٹکرا کر لوٹ جائے۔ ڈی کی پوشاک سے چھوٹتی گرمی کی لہروں سے مجھے اپنا چہرہ تپتا محسوس ہوا۔ کندھوں تک جھولتے کانوں کے سونے کی بوندے، لٹکتے بریسلٹ، پوشاک کی پرتوں کو کانک سے جھٹکنے کے لیے ڈی جب اپنی باہیں اوپر اٹھاتی ہے تو وہ جھنجھناتے ہیں، لہراتی ڈھیلی ڈھالی پوشاک۔ جیسے جیسے پاس آتی ہے مجھے اچھی لگنے لگتی ہے۔ میگی کی اونہ مجھے پھر سنائی دی۔ اس کی بہن کے بال بھیڑ کی اون کی طرح سیدھے کھڑے ہیں، رات سے کالے، دو لمبی چوٹیوں میں گدھے سرے ننھی چھپکلیوں کی طرح گلائی میں لپٹے کانوں کے پیچھے گم ہو گئے ہیں۔ واہ سو جو ٹینا او، ڈی کہتی ہے، یعنی یوگانڈا کے بگانڈا لوگوں کی بھاشا لوگانڈا میں دوپہر کے پہلے کا ابھیوادن۔ اپنی پوشاک میں وہ ایسی لگتی ہے مانو تیرتی سی چلی آ رہی ہو۔ ناٹا گٹھیلا نابھی تک لمبے بالوں والا آدمی کھل کر مسکرا رہا ہے۔ پھر وہ بولا، السلام علیکم ماں اور بہن۔ میگی سے گلے ملنے وہ آگے بڑھا، لیکن میگی پیچھے کھسک گئی، بالکل میری کرسی کے پیٹ کے پیچھے تک۔ وہاں مجھے اس کا کانپنا محسوس ہوا، اور میں نے جب اوپر دیکھا تو اس کی ٹھوڑی سے پسینہ ٹپکتا دکھا۔ اٹھنا مر، ڈی نے کہا، کیونکہ میں بھاری بھرکم ہوں، اٹھنے کے لیے مجھے خود کو دھکیلنا سا پڑتا ہے۔ اٹھنے سے ایک آدھ سیکنڈ پہلے سے ہی اٹھنے کی کوشش کرتی سی دکھ جاتی ہوں۔ ٹی مڑی اور سینڈل میں اجلی ایڑیاں جھلکاتی واپس کار کی طرف گئی، پھر ایک پولرائڈ کیمرے کے ساتھ باہر جھانکا، تیزی سے جھکی اور مکان کے سامنے بیٹھی میری اور میرے پیچھے دبکی میگی کی ایک پر ایک تصویروں کی جھڑی لگا دی۔ فوٹو لینے سے پہلے ہر بار وہ ٹھیک سے جانچ لیتی کہ مکان بھی شامل ہے۔ احاطے کے کنارے ایک گائے چرتی ہوئی آئی تو ڈی نے میگی، مکان اور میرے ساتھ اس کی بھی تصویر لے لی۔ پھر پولرائڈ کو کار کی پچھلی سیٹ پر رکھ کر وہ میرے پاس لوٹی، میرا ماتھا چوما۔ اس بیچ السلام علیکم میگی کا ہاتھ پکڑ کر ہلا رہا ہے۔ میگی کا ہاتھ مچھلی کی طرح بے جان اور باوجود پسینے کے شاید اتنا ہی ٹھنڈا ہے۔ وہ بار بار اسے واپس کھینچنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ السلام علیکم شاید اس کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتا ہے، مگر کسی خاص نایاب طریقے سے، یا پھر جانتا ہی نہیں کہ لوگ کیسے ہاتھ ملاتے ہیں۔ جو ہو، جلد ہی وہ میگی سے نراش ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں، ڈی؟ نہیں ماما، ڈی نہیں، وانجیرو لیوونیکا کمینزو۔ ڈی؟ ڈی کو کیا ہوا، میں جاننا چاہتی ہوں۔ وہ مر چکی ہے، وانجیرو نے بولا۔ میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میرا نام ان لوگوں کے نام پر رکھا جائے جو مجھ پر ستم ڈھاتے آئے ہیں۔ تم بھی اتنی ہی اچھی طرح جانتی ہو جتنا کہ میں، کہ تمہارا نام ڈی سی آنٹی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ڈی سی میری بہن کا نام ہے، اسی نے ڈی کا نام رکھا تھا۔ ڈی کے جنم کے بعد سے اسے ہم بڑی ڈی بلانے لگے تھے۔ اور اس کا نام کس کے نام پر رکھا گیا تھا؟ وانجیرو نے پوچھا۔ میرے خیال سے نانی ماں ڈی کے نام پر، میں نے کہا۔ اور ان کا نام کن کے نام پر؟ ان کی ماں، میں نے کہا۔ اور دیکھا وانجیرو اوب رہی ہے۔ لیکن بس اتنی ہی دور تک کا میں بتا سکتی ہوں، اس کے پہلے کا مجھے نہیں معلوم۔ حالانکہ دراصل اسے میں شاید سول وار کے بھی پہلے کی ہر شاخہ تک لے جا سکتی تھی۔ دیکھا، السلام علیکم بولا، وہی تو، میں نے میگی کو کہتے سنا۔ میں تو وہاں تھی نہیں، میں نے کہا۔ اپنے پریوار میں ڈی سی کے پرکٹ ہونے کے پہلے، تو کیوں میں اتنا پہلے جانے کی کوشش کروں؟ وہ بس کھڑا کھڑا میری اور کچھ اس طرح دیکھتا ہوا مسکراتا رہا، مانو کسی اے ماڈل کی کار کا معائنہ کر رہا ہو۔ میرے سر کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کے اور وانجیرو کے بیچ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوتے رہے۔ اس نام کا اچارن کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر تم نہ چاہو تو مجھے اس نام سے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، وانجیرو نے کہا۔ کیوں نہیں، اگر تم چاہتی ہو تو ہم تم کو اسی نام سے پکاریں گے۔ مجھے معلوم ہے شروع میں عجیب لگے گا، وانجیرو نے کہا۔ عادت پڑ جائے گی، میں نے کہا۔ پھر سے بولو دھیرے دھیرے۔ خیر، نام کا مسئلہ ہم نے جلد ہی سلجھا لیا۔ السلام علیکم کا نام دگنا لمبا اور تگنا کٹھن تھا۔ جب دو تین بار میری زبان لڑکھڑائی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے صرف حاکم باربر کہہ کر پکاروں۔ میں نے پوچھنا چاہا کہ کیا باربر حجام ہے، لیکن واقعی میں ایسا نہیں سمجھتی تھی، اس لیے پوچھا نہیں۔ آپ سڑک کے شروع میں رہنے والے لوگوں کے یہاں کے ہوں گے، وہی جو ماس کے لیے مویشی پالتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ملنے پر السلام علیکم کہتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں ملاتے۔ پشوؤں کو چارہ دیتے، باڑ کی مرمت کرتے، نمک چٹانے کی ڈھیریوں کے لیے چھپر ڈالتے، بھوسا پھیلاتے، ہر دم ویست رہا کرتے ہیں۔ ایک بار جب گوروں نے مویشیوں کے جھنڈ میں سے کچھ کو زہر دے دیا تھا تو ان کے مرد ہاتھ میں بندوقیں لیے ساری رات جاگتے رہے تھے۔ وہ نظارہ دیکھنے کے لیے میں ڈیڑھ میل پیدل چلی تھی۔ آگے میں باربر نے کہا، ان کی کچھ باتیں تو میں مانتا ہوں لیکن کھیتی اور جانور پالنا میرا طریقہ نہیں ہے۔ ان دونوں نے بتایا نہیں اور میں نے پوچھا نہیں کہ وانجیرو یعنی ڈی نے کیا واقعی اس سے شادی کر لی ہے۔ کھانے بیٹھے تو چھوٹتے ہی وہ بولا کہ پتے دار سبزیاں تو وہ کھاتا نہیں اور سور کا گوشت دوشت ہوتا ہے۔ وہیں وانجیرو کارن بریڈ، چٹلن اور ہری سبزیاں اور باقی سب کچھ کھاتی رہی اور شکر کندی کے بارے میں دھڑلے سے بولتی رہی۔ ہر چیز میں اسے مزہ آ رہا تھا، اس میں بھی کہ ہم اب بھی وہی بینچیں استعمال کر رہے تھے جو کبھی اس کے ڈیڈی نے بنائی تھی، کیونکہ کرسیاں خریدنے کو پیسے نہیں تھے۔ او مما، وہ چیخی، پھر حاکم باربر کی طرف مڑی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بینچیں کتنی پیاری ہیں، ان پر پٹھوں کے نشان محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ بینچ پر اپنے نیچے اور ساتھ کی جگہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بولی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور اس کے ہاتھ نانی ماں کی بٹر ڈش پر بند گئے۔ یہ رہی، اس نے کہا، میں جانتی تھی کہ ہے ایک چیز جو اگر مانگ سکوں تو میں تم سے مانگنا چاہتی ہوں۔ میز سے کود کر وہ اس کونے میں گئی جہاں डोल मथानी रखे थे। डोल में रखा दूध अब तक थक्का बन चुका था। उसने डोल की ओर देखा और देखती रही। मुझे इस डोल का ढक्कन चाहिए, वो बोली। इसे बड़े अंकल ने उस पेड़ से तराशा था ना, जो आप सबका साझे का था। हाँ, मैंने कहा। आहा, वो खुश होकर बोली, और मुझको पलटा भी चाहिए। वो भी बड़ी अंकल ने तराशा था, बार्बर ने पूछा। डी यानी वंजेरो ने मेरी तरफ देखा। आंटी डी के पहले पति ने तराशा था, मैगी इतना धीमे से बोली कि मुश्किल से सुनाई दिया। उनका नाम हेनरी था, पर उनको स्टैश बुलाते थे। मैगी का दिमाग हाथी के दिमाग जैसा है, हंसते हुए वंजेरो बोली। डोल के ढक्कन को मैं कोने वाली लंबी मेज पर सजावट के लिए रख सकती हूँ, उसने कहा, और डोल के ऊपर एक प्लेट सरका दी। और इस प्लेट का भी मैं कोई ना कोई कलात्मक इस्तेमाल खोज ही लूंगी। उसने पलटे को लपेटा तो हत्था बाहर निकला रह गया। एक पल को मैंने उसे अपने हाथों में ले लिया। ये नजर आने के लिए ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत नहीं थी कि मक्खन निकालने के लिए उसे ऊपर नीचे दबाने वाले हाथों ने उस पर दाब का एक निशान छोड़ दिया है। दरअसल कई सारे छोटे छोटे निशान देखे जा सकते थे। अंगूठे और उंगलियां कहां कहां लकड़ी पर दबे थे। हल्के पीले रंग की सुंदर लकड़ी जो बड़ी डी और स्टैश के अहाते में उगे एक पेड़ से निकली थी। खाने के बाद डी यानी वंजेरो मेरे पलंग के पायताने रखे संदूक के पास गई और उसे खखोलने लगी। मैगी रसोई में ही डिशपैन के ऊपर रुकी रही। दो रजाइयां लिए वंजेरो बाहर निकली। दोनों को नानी माँ डी ने टुकड़ा टुकड़ा जोड़ा था। फिर बड़ी डी और मैंने सामने के पोर्च में उन्हें चौकटे में कस रजाइयां बनाई थी। एक रजाई में अकेला सितारा और दूसरी में पर्वत के गिर्द चक्कर के डिजाइन बने थे। दोनों में उन पोशाकों के टुकड़े थे जो नानी माँ डी ने 50 साल या शायद उसके भी पहले पहनी रही होंगी, और नाना जेरल की कैरी की छींट वाली कमीजों के छोटे छोटे टुकड़े, और पर नाना ऐजा की उस वर्दी का एक नन्हा सा नीला लगभग एक माचिस के बराबर टुकड़ा जो उन्होंने सिविल वॉर में पहनी थी। मामा, वंजेरो बोली चिड़िया सी मीठी, क्या मैं ये पुरानी रजाइयाँ ले जा सकती हूँ? मैंने सुना रसोई में कुछ गिरा, और मिनट भर बाद रसोई का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। तुम दूसरी वालियों में से एक दो क्यों नहीं ले लेती, मैंने पूछा। ये पुरानी वाली तो मैंने और बड़ी डी ने कपड़ों के कुछ टुकड़ों को लेकर बना ली थी जो मरने के पहले तुम्हारी नानी ने जोड़े थे। नहीं, वंजेरो बोली, वो वाली नहीं चाहिए। उनके बॉर्डर के चारों ओर मशीन की सिलाई है तो वो ज्यादा दिन चलेंगी, मैंने कहा। बात वो नहीं है, वंजेरो ने कहा, ये उन पोशाकों के टुकड़े हैं जो नानी माँ पहना करती थी। ये सारी सिलाई उन्होंने हाथों से की है, सोचो जरा। रजाइयों को कसकर पकड़े वो उन पर हाथ फेरती रही। इनमें से कुछ टुकड़े जैसे वो लैवेंडर रंग वाले उन पुराने कपड़ों के हैं जो उनकी माँ ने उनको दिए थे, मैंने कहा, और रजाइयों को छूने आगे बढ़ी। डी यानी वंजेरो पीछे हट गई, बस इतना ही कि मैं उनको छू ना सकूं। रजाइयां अभी से उसकी हो चुकी थी। सोचो भला, उसने फिर सांस भरी और उन्हें सीने पर कस लिया। सोचा तो ये है, मैंने कहा, मैंने मैगी से वादा किया था कि जब वो जॉन टॉमस से शादी करेगी तो ये रजाइयां मैं उसको दूंगी। डी ऐसी चूहक उठी जैसे मधुमक्खी ने काट खाया हो। मैगी को क्या समझ इन रजाइयों की, वो बोली, वो तो इतनी दकियानूसी है कि उसको रोजाना इस्तेमाल करने लगेगी। मेरे ख्याल से जरूर करने लगेगी, मैंने कहा। ईश्वर जानता है इतने लंबे अरसे से मैंने इन्हें बिना इस्तेमाल किए बचा कर रखा हुआ है। मैं चाहती हूं वो इस्तेमाल करे। ये बात मैं उठाना नहीं चाहती थी कि डी जब कॉलेज जा रही थी एक रजाई मैंने उसे देनी चाहिए थी, तब उसने कहा था पुराने फैशन की है, अब नहीं चलती। पर ये तो अनमोल हैं, वो अब कह रही थी क्रुद्ध, क्योंकि क्रोध उसका स्वभाव है। मैगी इनको बिस्तर पर रख देगी और 5 साल में इनके चिथड़े हो जाएंगे, उससे भी कम वक्त में। तब फिर वो और बना सकती है, मैंने कहा, मैगी को रजाई बनाना आता है। डी यानी वंजेरो ने इकारत से मुझे देखा। आप कभी नहीं समझेंगी। बात इन रजाइयों की है, इन रजाइयों की। अच्छा, कुछ चकरा कर मैंने पूछा, तुम क्या करोगी इनका? टांगूंगी, वो बोली, मानो रजाइयों से बस यही एक काम लिया जा सकता हो। मैगी तब तक दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। उसके पाँव के एक दूसरे पर घिसटने की जो आवाज़ निकली वो मुझे लगभग सुनाई दे गई। उसे ले लेने दो ममा, उसने कहा, किसी ऐसे की तरह जिसे आदत हो कि ना कभी कुछ उसे मिलेगा ना कभी कुछ उसके लिए रखा जाएगा। रजाइयों के बिना भी नानी डी मुझे याद रहेंगी। मैंने ध्यान से उसे देखा। उसने अपना निचला होंठ वेरी तमाकू से भर रखा था, जिसने उसके चेहरे को एक नशेड़ी की गिरी हुई शक्ल दे दी थी। उसे नानी माँ डी और बड़ी डी ने खुद रजाई बनाना सिखाया था। जले के निशान वाले अपने हाथों को वो अपनी स्कर्ट की परतों में छिपाए खड़ी थी। बहन को उसने भय जैसे किसी भाव के साथ देखा, नाराजी के साथ नहीं। यही भाग्य था मैगी का। उसे इस तरह खड़े देख ठक से कोई चीज मेरे सिर पर आ लगी और पांव के तलुओं तक दौड़ गई, ठीक जैसे जब मैं चर्च में होती हूं और परमात्मा की अनुभूति मुझे स्पर्श करती है और हर्ष से मैं चीख उठती हूं। मैंने ऐसा कुछ किया जैसा पहले कभी नहीं किया था। मैगी को बाहों में समेटा, घसीट कर कमरे तक ले गई। मिस वांजेरो के हाथ से रजाई झटकी और मैगी की गोद में पटक दी। बाकी में से एक या दो ले लो, मैंने डी से कहा, पर वो मुड़ी और बिना एक शब्द बोले बाहर हाके में बार्बर के पास चली गई। तुम बिल्कुल कुछ नहीं समझती, मैं और मैगी जब बाहर कार तक गए उसने कहा। क्या नहीं समझती, मैंने जानना चाहा। अपनी धरोहर, वो बोली। फिर मैगी की ओर मुड़ी, उसे चूमा और कहा, तुम्हें चाहिए कि कुछ कोशिश करो, कुछ बनो मैगी। हमारे लिए सच ही नया दिन उगा है, पर तुम और ममा जिस तरह रह रहे हो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। उसने धूप का चश्मा लगाया जिसने उसकी नाक की नोक और ठोड़ी के ऊपर सब ढक लिया। मैगी मुस्कुराई, शायद धूप के चश्मे पर, लेकिन असली मुस्कान, भयभीत नहीं। कार की धूल को जब बैठते देख लिया तो मैंने मैगी से कहा कि मेरे लिए चुटकी भर तमाकू ले आए, और फिर हम दोनों वहीं बैठे रहे मगन मन, जब तक कि घर जाकर सोने का वक्त नहीं हो गया। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।